Chitty. Chitty. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रम क्षितिज में मैं एक बार फिर अपने समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम क्षितिज, जिसमें हम अपने स्थानीय और देश विदेशों से आने वाले हिंदी विषय को लेकर जो हमारे मेहमान आते हैं उनके साथ उनके विचारों को हम इस कार्यक्रम क्षितिज में आप तक पहुंचाते हैं। हमारा ये कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, जो विश्व भर में हिंदी सचिवालय के सहयोग से अन्य देशों तक भी पहुंचाया जाता है। इसमें आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अपना पढ़ाई कर चुके हैं, आप एमए, एमफिल और पीएचडी उन्होंने वहाँ से अपनी पूरी की है और 2010 से वे दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन का कार्य, पढ़ाई का कार्य जो है हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वह अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं हमारे लिए जैसे कि मैंने बताया बड़ी खुशी की बात है और वे आज ही मॉरिशस में आए हैं और 12 फरवरी तक वे मॉरिशस में रहेंगे। वे अपने अनुभवों के साथ क्षितिज कार्यक्रम में हमने उनको लिया है, वे अपने उद्देश्य, अपने परिचय, अपनी पुस्तकों, अपनी रचनाओं और अपने होने वाले कार्यशालाओं के बारे में हम उनके बारे में आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं संजय कुमार जी का तहे दिल से स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी।
संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस विजिट के दौरान जो आपका ये दौरा है, उस उद्देश्य से हम लाभ उठाते हुए जो कार्यशाला आयोजित की गई है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यशाला जो है, क्यों एक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, ख़ास तौर पर जब हमारे अनुभवी लोग आते हैं, उससे क्या हमारे लोग यहाँ के लाभ उठा सकते हैं?
यह कार्यशाला मुख्य रूप से, इस कार्यशाला में 10वीं तक के बच्चे शरीक होंगे।
अच्छा।
और साथ ही उनके शिक्षक भी, और मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो ये कार्यशाला मुख्य रूप से कविता पर केंद्रित है।
अच्छा।
और उसमें भी विशेष रूप से आधुनिक कविता पर। तो कविता का पठन पाठन कैसे हो, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता कैसे पढ़ी जाए और कैसे समझाई जाए, ताकि उसमें जो एक आनंद का तत्व होता है वह भी बना रहना चाहिए, और साथ ही कविता की जो अपनी भूमिका है समाज में, जो उसका महत्व है, उसे भी समझे जाने की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में हैं।
अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इससे तो हमें, हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत लाभ होगा, हमारे ख़ास तौर पर हमारे विद्यार्थी गणों को, जिससे कि वो लाभ उठा सकेंगे, और शिक्षक किस तरह से वो विद्यार्थियों को कविता के पठन पाठन में सहयोग दे सकेंगे, ताकि वे कविताएं, जो कविताओं की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं या कविताओं का जो आयोजन किया जाता है बच्चों को लेकर, उसमें वे उनको सहयोग दे सकेंगे शिक्षक लोग। अच्छा, अब इसमें आप ये बताएं कि जब आपने कहा कविताओं का, क्यों आपने सिर्फ आधुनिक कविताओं का चयन किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कबीर, तुलसी, मीरा जो है इनका भी बड़ा बोलबाला है, लोग इनको जानते हैं और सिलेबस में भी इनकी रचनाएं, कविताएं, दोहे वगैरह बहुत प्रचलित हैं, तो क्यों आधुनिक कविताओं को ही आपने लिया?
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये नहीं है कि आधुनिक कवि ही महत्वपूर्ण है और पहले के कवि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कबीर और तुलसी बहुत बड़े कवि हैं, भक्तिकाल बहुत बड़ा युग है कविता का। इसका कारण सिर्फ व्यावहारिक है।
अच्छा।
पहले 2 दिन की कार्यशाला होने वाली थी, तो उसमें 1 दिन कार्यशाला के लिए तय था कि भक्ति काव्य, तुलसी और कबीर वगैरह को लेकर होगा, और दूसरे दिन आधुनिक काल की चर्चा होगी, लेकिन कुछ कारणों से विश्व हिंदी सचिवालय की अपनी व्यस्तता और संभवतः ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है नज़दीक में ही, इन सब व्यस्तताओं के कारण संभवतः उसमें वो एक दिन का ही
रखा गया
तो इसलिए उसे संक्षिप्त किया गया।
अच्छा।
और तब ये माना गया कि सब कुछ लेकर चलेंगे तो फिर ढंग से किसी चीज़ पर चर्चा नहीं हो पाएगी, तो फिर यह तय किया गया कि हम आधुनिक कविता पर ही इस बार चर्चा
अच्छा,
करेंगे।
उसमें भी क्या आधुनिक कवि जो हैं, कोई विशेष कवि जिन पर आप चर्चा करना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल, इसमें मुख्य रूप से उन कवियों पर चर्चा होगी जो स्कूल के सिलेबस में हैं।
अच्छा।
और जैसे इसमें मुख्य रूप से हैं छायावाद के कवि
जयशंकर प्रसाद, महादेवी
प्रसाद। प्रसाद तो नहीं है इस बार, उनकी कविता उसमें नहीं है।
अच्छा।
लेकिन सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, और इनके पहले के द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, तो उनकी कविता है।
अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मैं चाहे हमारे प्राचीन कवियों को उतना नहीं इसमें लिया जाएगा, आधुनिक की आपने चर्चा की, क्या प्राचीन काव्य और आधुनिक काव्य में के पठन पाठन में कुछ अंतर खास है?
हाँ बिल्कुल है। पहला अंतर तो भाषा को लेकर ही हो जाता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो भक्तिकाल की कविता है या रीतिकाल की कविता है वो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है, तो वो लिखी गई है मुख्य रूप से ब्रजभाषा में या फिर अवधी में या मैथिली में। तो आजकल के बच्चे जो विद्यार्थी जो खड़ी बोली हिंदी जानते हैं उनके लिए भाषा के स्तर पर भी उनके लिए थोड़ी कठिनाई,
ये बिल्कुल आपने सही कहा।
और दूसरा जो युग का अंतर होता है, तो आप जितनी आसानी से आजकल के विद्यार्थी आधुनिक कविता से अपने को जोड़ पाएंगे, उस युग से अपने को सीधे तौर पे उस तरह से
जोड़ पाएंगे
थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसका अपना महत्व है, वो हमारी परंपरा का हिस्सा है बिल्कुल, और कविता का वो सबसे बड़ा युग है हिंदी कविता का, तो उसका अपना महत्व है।
और जैसे आपने कहा, कहीं हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादा जो है हिंदी खड़ी बोली को जो है उसका चयन करते हैं, जब जहाँ सिलेबस कार्यक्रमों में आता है उसमें भी जब जितने प्राचीन, पहले जबकि कोई उनके पास चॉइस नहीं होती थी तो वे प्राचीन कवि ज़्यादा लेते थे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, इनको लेते थे, कबीर को। लेकिन आजकल मैंने देखा है बच्चों में जो रुचि है वो आधुनिक कवियों की ओर ज़्यादा आ रही है, वही बात जो आपने बताई, भाषा जो बहुत सरल और सहज उनके लिए होती है,
और भावबोध के स्तर पर भी वो नज़दीक जान पड़ती है,
तो ये उनकी व्यवहारिक भाषा के बहुत नज़दीक होती है और इसमें फिर रुचि ज़्यादा होती है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि कार्यशालाएँ जब जिसमें शिक्षक भी होंगे और हमारे विद्यार्थीगण भी होंगे, तो आप अपने अनुभव से उनसे क्या उम्मीद लगाए हैं?
मेरा अनुभव यहाँ को लेकर बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से महात्मा गांधी संस्थान से भी जुड़ा रहा हूँ, एक बाह्य परीक्षक के रूप में। वहाँ जो बीए ऑनर्स करते हैं हिंदी से, और हिंदी से जो एमए करते हैं, उनका मैंने बाह्य परीक्षक के रूप में उन्हें देखा है, और मेरी समझ है कि यहाँ के विद्यार्थी मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं, और साथ ही यहाँ के शिक्षक भी बहुत ईमानदारी से अंक देते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो मेरा अनुभव अच्छा है, और मैं उसी मेहनत, ईमानदारी और लगन की उम्मीद कल भी कर रहा हूँ।
चले, मेरे को पूरी आशा है कि कहते हैं ना, जहाँ चाहा होती है वहाँ राह होती है, और आपको, आप उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पर वाकई में हिंदी में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, और शिक्षकगण भी अपनी पूरी तरह से उनको उनके पढ़ाई में जो है पूरा सहयोग देते हैं। अब आप हम बताएं कि कार्यशाला को किस तरह से थोड़ा सा संचालित करेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा पता चले कि कैसे वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
इसी कार्यशाला में मुख्य रूप से ये जो 4 कवि हैं, इनकी कविताओं के विश्लेषण पर चर्चा केंद्रित होगी, कि और जैसा कि मैंने कहा कि चर्चा इसी बात को लेकर केंद्रित होगी कि कविता का कैसे विश्लेषण किया जाए, और सिर्फ विश्लेषण ही नहीं किया जाए बल्कि उसके पठन पाठन में एक रुचि रहे, आनंद का तत्व भी रहे। तो एक शिक्षक के रूप में मैं हमेशा समझता हूँ कि कविता को जब पढ़ाया जाए तो सामने विद्यार्थी को थोड़ा रुचिकर भी लगना चाहिए, और अपने आप को, अपने मन को किसी न किसी स्तर पर उन कविताओं से वो जोड़ना
चाहिए,
यह जरूरी है, यह आवश्यक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल की जो कार्यशाला होगी वो हमारे विद्यार्थियों को और हमारे शिक्षकों को रुचिकर लगेगी, तो ये मेरे लिए उसकी सार्थकता होगी।
मेरे को भी हमारी भी पूरी आशा है कि हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक जो हैं इस कार्यशाला से पूरा पूरा लाभ उठा सकेंगे, ताकि वो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को, क्योंकि देखें थोड़ी सी हमारी, मैं समस्या नहीं कहूँगी, थोड़ी सी कहीं हमारी एक दरार जो है, बच्चे जो हैं स्कूलों में हिंदी चाहे पढ़ते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से वो उतना बोलते नहीं हैं, तो शायद इस कविता के पठन पाठन से उनमें ये जो हिचकिचाहट है वो कहीं ना कहीं ज़रूर दूर होगी और इससे वो ज़्यादा व्यवहारिक बन सकेंगे, मैं समझती हूँ। क्योंकि जब आप उसको उसका पठन पाठन करते हैं तो उसमें कई हद तक आपकी हिचकिचाहट जो बोलने की होती है वो दूर होती है, इस बात से आप सहमत हैं?
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इसीलिए कार्यशाला में जिस विषय पर जो बीज वक्तव्य रखा गया है तो हम लोगों की सहमति इसी बात को लेकर बनी कि बीज वक्तव्य का विषय है आधुनिक संदर्भ में हिंदी कविता की सार्थकता।
अच्छा,
तो आज के जीवन में कविता की क्या सार्थकता हो सकती है, उसका क्या महत्व हो सकता है, इसी बात को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो, और निश्चित रूप से एक नई पीढ़ी में और ये इंटरनेट के ज़माने में और सोशल मीडिया के ज़माने में साहित्य में रुचि, पुस्तकों को पढ़ने में रुचि थोड़ी घटी है, और इसे मुझे लगता है कि लेखकों को थोड़ी चुनौती के रूप में लेनी चाहिए। एक तो पुस्तकों में उनकी रुचि बनाए रखनी चाहिए, और साथ ही जो दूसरे इंटरनेट के माध्यम से हमारे सामने जो दूसरे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उनका भी अगर हम रचनात्मक उपयोग करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि जितनी आशाएँ आप इस कार्यशाला से लगाए हुए हैं और आप उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और आपको पूरा सहयोग हिंदी सचिवालय से प्राप्त हो रहा है, हमारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थीगण जो हैं इस कार्यशाला में भरपूर रूप में आपके साथ जुड़ेंगे ताकि वे इसे पूरा पूरा लाभ उठा सकें। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए भी हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आशा करते हैं हम बहुत जल्द कभी ना कभी किसी तरह इसी तरह के प्लाटो पर फिर कभी मिलेंगे, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, यहाँ कार्यक्रम क्षितिज यहाँ पूरा हो रहा है, अपने एक और प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार,
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।